ठीक बात है, इससे समाज का तो ठीक रहेगा, किंतु भगवत की प्राप्ति उससे होगी कि नहीं? यदि प्रहलाद महाराज अपने पिता की सेवा करते हैं हिरण्यकश्यप की, उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तो कि नहीं होगी कि नहीं?
कृष्ण की
मैंने क्या कहा?
प्रहलाद महाराज अपने पिता
प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप की सेवा करेंगे, उसकी बात मानेंगे तो उनको भगवान मिल जाएंगे तो?
पक्का जरूरी नहीं है, अगर वो भगवान के बारे में बताएंगे तब ठीक है।
हिरण्यकश्यप को तो आप जानते हैं?
नहीं, नहीं पहुंचे।
कश्यप को नहीं जानते, उनके पिता थे,
उनके अभी नहीं पहुंचे,
तो वो कहेंगे जी भगवान का भजन मत करो, और उन्होंने छोड़ दिया पिताजी की सेवा के, उसे भगवान को मिल जाएंगे? नहीं। इसलिए सभी माता पिता की सेवा करने से ही भगवान नहीं मिलेंगे। यदि परम वैष्णव हों, उनकी सेवा यदि की है तो उसे मिल जाएगा। इसलिए हुआ जब भक्तों की सेवा करेंगे तब तो वो नहीं मिलेंगे, इसलिए सभी माता पिता की नहीं। दूसरी बात, हम जो प्रसन्न करते हैं इसके द्वारा गृहस्थ धर्म में रहकर, तो उसे क्या होगा? मुक्ति मिलेगी। मुक्ति संसार से जो मिलेगी, कष्टों से जो छुटकारा मिलेगा, यही आपका जीवन का उद्देश्य है?
नहीं।
क्या है
जीवन का उद्देश्य? है भगवान से प्रेम करें और भगवान के पास जाए।
क्यों?
क्योंकि हम उनके आने हैं।
आपका स्वरूप ही है वो, अभी ढका हुआ है किंतु स्वरूप है उनकी सेवा। हमारा स्वरूप ही बना है प्रेम के लिए, प्रेम उसमें है। जैसे सरसों है, सरसों क्या है?
सरसों, हाँ।
उसमें तेल है, उसको पीसोगे तो तेल ही आएगा। और समुद्र की रेती या मिट्टी को पीसने से तेल नहीं आएगा, लाख पीसे। तो तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, ये स्वरूपता, इसलिए इसको निकालने की चेष्टा करनी चाहिए। दूध में घी है, कैसे निकलेगा? मथने से ही नहीं होगा, मक्खन निकलेगा, मक्खन में भी घी दिखेगा नहीं। उसका आग पर रखो, घी अलग हो जाएगा और बाकी अलग हो जाएगा, तो घी को तुम देख सकोगे। वैसे साधन के द्वारा इसको हृदय में प्रकट करना है। ये चीज असल है, उद्देश्य है भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है इसको प्रकाश करना, जिसे कि भगवान की सेवा करने से हम भी सुखी रहेंगे, कृष्ण भी सुखी रहेंगे। ये जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य। ये जो वर्णाश्रम में धर्म में रह करके माता पिता की सेवा करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए जो आपको मुक्ति मिलेगी, इससे भगवत प्रेम मिलेगी। मुक्ति तो होगी, मुक्ति मैंने क्या है? संसारिक आसक्ति कट जाएगी और संसार के जो दुख हैं ये दूर हो, बस इतना ही है, और कुछ लाभ नहीं। इसलिए महापुरुष जी ने कहा ये नहीं, आगे भी भगवान के प्रति प्रेम ही हमारा जीव का शरीर।
महाराज जी, श्रवण ने अपनी माता पिता की बहुत सेवा की थी, उसको भगवान की प्राप्ति नहीं?
नहीं।
श्रवण ने तो माता पिता की बहुत सेवा की,
माता पिता की सेवा करने से उसको स्वर्ग मिलेगा, लाखों करोड़ों वर्ष तक स्वर्ग के सुख को भोगेगा, किंतु इसमें आत्मा का तो ज्ञान नहीं। भगवत प्राप्ति से क्या संबंध है? भगवान का नाम करने से, माता पिता की सेवा करता हुआ भी यदि कोई हरि नाम करता है ठीक से, और भगवान के प्रति प्रेम रखता हुआ, ये भाव रखता है कि पिताजी भी भगवान के सेवक हैं, इसलिए इनकी सेवा करो, तो उसे हो जाएगा। किंतु पिताजी जैसे हैं इनकी हम सेवा करें, वो भक्त हों चाहे न हो, तो उससे अधिक से अधिक आपको यही मिलेगा कि कुछ दिनों के लिए स्वर्ग मिलेगा, अब वो करके सेवी होगी, उसे भक्ति नहीं। भक्ति होगी भगवत संबंधी कोई क्रिया से, सुकृति होगी। यदि एक पैसा भी आपने दिया किसी सच्चे व्यक्ति को और उसने भगवान की सेवा के लिए उसने तेल खरीद करके उसे बत्ती ठाकुर जी को जला दिया, तो वो तो भगवान तक धीरे 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 पहुंचा दी। और ये लाख कोटि वर्ष तक पिता की सेवा करने से भी भगवान के प्रति तनिक भी भावना नहीं आएगी। इसलिए माता पिता घर में जब हैं तो माता पिता स्त्री के प्रति, पुत्र के प्रति, पति के प्रति जो कर्तव्य है वो करो, किंतु ये समझो भगवान ही पति हैं, भगवान ही पिता हैं, भगवान ही सब कुछ हैं, इसलिए भगवान की सेवा करने से इनकी भी प्रसन्नता हो जाएगी। जैसे पांडव लोग द्रौपदी के प्रति जो कर्तव्य था उन्होंने पूरा किया, द्रौपदी ने भी इनके प्रति कर्तव्य पूरा किया, अर्जुन भीम नकुल सहदेव परस्पर भाइयों में जो कर्तव्य था उसको भी पूरा किया, किंतु कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति उनकी रही मूल में। अर्जुन द्रौपदी को इसलिए प्यार करते हैं कि ये हमसे अधिक कृष्ण को प्रिय है, उसको सखी कहते हैं, उसके बुलाने से आ जाते हैं, इसलिए उसके साथ में प्रेम करते हैं। और द्रौपदी देखती है ये अर्जुन भगवान का भक्त है, इसलिए उसके प्रति वो सेवा की भाव, उनके परिवार में भगवान के प्रति भक्ति ही मूल चीज है, और सेवा जो है गौण है। गौण है समझती हैं, गौण माने नेक्स्ट, वो प्रधान नहीं है, अप्रधान है। इसी तरह से भक्ति में भी बहुत उद्देश्य, जीवन में बहुत, भगवान को पाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, भगवान को तो कंस ने भी पाया, मिला कि नहीं, जरासंध दुर्योधन भी भगवान कृष्ण के साथ में आया गया, इससे नहीं होगा। कृष्ण के प्रति जो प्रेम है ये हमारा जीवन का उद्देश्य है।
तुम्हारा ये बात गलत है क्या कि जो माँ बाप की आत्मा को दुखा के तकलीफ देके जो भक्ति करता है, तो ऐसे कहते हैं लोग कि माँ बाप की आत्मा दुखा के भक्ति करे तो भक्ति क्या लगेगी, कुछ नहीं।
झूठ बात नहीं है,
गलत है ना,
बहुत गलत है। जैसे हिरण्यकश्यप का मन खराब हुआ कि नहीं,
तो मना किया था कि तुम मस्ती मत करो,
हाँ तो वो करते थे, तो इसलिए वो दुख दुखी होता था।
ऐसा होता है जो मना तो भी करते हैं माँ बाप, फिर भी अगर पुत्र थोड़ा ज्यादा करता है तो माँ बाप ये बोल देते हैं कि मेरे से बिना बोले बिना ऐसे करे,
वो उनका भी अज्ञान है, वैसा जो कहते हैं, इसलिए भगवान का भजन कर दिया जाए तो माता पिता का अपने आप उद्धार हो जाता है, जो लाख वर्षों में वो नहीं कर सकते थे। माता पिता वो वृद्ध हो गए हैं और भगवान का नाम सुन करके चूहते हैं और गाली गलौज करते हैं, तब तक फिर उनके उनसे कोई संबंध
नहीं। शिवानगर
नहीं, यदि वो भगवान का भजन करते हैं तो प्राण दे करके उनकी सेवा करें, यहाँ तक तो ठीक है, और भजन नहीं करते हैं यदि, तब जो साधारण रूप में उनकी सेवा है करते हुए उनसे अधिक संपर्क न रख करके भगवान की तरफ में
आते हैं। माली भजन दोनों करते हैं, पिता भी करता है, पुत्र भी करता है।
तुम्हारी धारणा तो अभी जो है वो अभी ठीक नहीं है, उस चीज को समझ नहीं रहे।
महाराज जी बता रहे हैं कि भजन करते हुए कोई भजन कर रहा है, पिताजी में बाधक है कुछ भी, तो वो जो है तो पुत्र की जो साधना है भजन है वो लग जाएगी, अगर पिता जो है वो जो भजन नहीं करता वो दूर हो जाएगा,
हाँ उससे उसकी भी भगवान में मति आ जाए।
मैं बात मान गया था, मैं पितावन दूर नहीं कर रहा है, अनुकूल है पितावन, भजन के अनुकूल है,
भजन का अनुकूल है, तो ठीक है ना, वो ऐसा होगा जो कहे
सेवा नहीं कर रहा है,
ठीक है ठीक है, वो पिता कहेगा जो बेटा मैं बहुत संतुष्ट हूँ, तुम भगवान का खूब भजन करो, हमारा तो अपना जैसा कर्म किया है यदि भजन का, तो वो समझेगा ये हमारा जीवन एकदम ऐसा ही चलेगा, उसको किसी को सेवा करने की जरूरत नहीं है, वो मरते दम तक वो संतुष्ट है, लाख भी वो नहीं कहेगा, उसकी भगवान के प्रति जो भक्ति है वो आकर्षण करके, वो नहीं बेटा नहीं लाखों बेटा को लेकर के उसकी सेवा में नहीं झुकते। हमारी कौन सेवा कर रहा है बतलाओ तो, इन लोगों को ये हजारों लोग हमारी सेवा कर रहे हैं, ये पीछे पीछे चल रहे हैं बतलाओ तो, वैसा यदि पिता होगा तो लाखों लोग उसकी सेवा करके धन्य हो जाएंगे।
मेरी सास है वो कुछ बहु भजन कर रही है, उसको कुछ नहीं बोली, चाहे वो सारा दिन भजन करती
है।
तुम्हारे जी से बात गलत है कि लोग जो बोलते हैं अनुकूल भी है फिर भी प्रतिकूल हो जाते हैं कभी कभी अपने पुत्र के प्रति,
हाँ नहीं होना चाहिए,
अनुकूल है फिर भी प्रतिकूल हो जाते हैं, फिर बोलते हैं माँ बाप की तो कोई सेवा करते नहीं है और चले जाते हैं साधु संतों के बीच में, तो वो उनके पाप इसमें तो तुम लोग की ये भक्ति लगेगी नहीं, तो
भगवान खुद कह रहे हैं बेटी यदि मेरी कोई सेवा अनन्य रूप में करता है मैं खुद उसका भरण पोषण करता हूँ, तो भक्तों की तो बात क्या, ऐसा कोई भक्त है जो अपने माता पिता को छोड़ दिया जो भजन पारायण है, ऐसा कोई उदाहरण आज तक है, ऐसा कोई उदाहरण ही नहीं है विश्व में,
कृपालु दयालु सब उसके अंदर आ जाते हैं,
यह बात गलत है। कभी भी वो न तो पिता वो पुत्र से चाहेगा न पुत्र चाहेगा कुछ, वो जहाँ देखेगा जब भक्ति का इतना भी है उसके प्रति सेवा ढाल देगा, अपने आप सेवा करेगा प्राण देकर। ये भक्ति का स्वभाव है। इसीलिए वो सब दिखलाया गया है। जिनके प्रिय न राम वै देही सजिए कोटि वैरीशम यद्यपि परम सने सजेव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलिगुरु सजेव कंत ब्रज वनितन भय जग मंगल कार्य। मीरा जी ने तुलसीदास जी के पास में पत्र लिखा, मैं घर में रह करके भजन करने के लिए बहुत चेष्टा करती हूँ, किंतु हमारी सास, हमारे ससुर, हमारे पति, हमारे पास पड़ोसी सभी लोग हमारे विरोधी हो गए हैं और हमको भजन नहीं करने देते, सब समय चाहते हैं ये भजन छोड़ दे। इस स्थिति में हम मुझे क्या करना चाहिए, आप हमको परामर्श दीजिए, आप हमारे शिक्षा गुरु जैसे हैं। तो उन्होंने एक पत्र लिखा, जिनके प्रिय न राम वैदेही, जिनके प्रिय राम और वैदेही, वैदेही सीता जी नहीं, सजिए कोटि वैरीशम, कोटि कोटि बैरी के समान में उनको छोड़ो, सजिए कोटि बैरी सम यद्यप परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही से स्नेही है, आदरणीय है, स्नेही है, उनको छोड़ो। संसार में स्नेही कौन है सबसे, माता है, पिता है, भाई है, गुरु है, पति है, इसे पढ़ करके और कौन स्नेही हो सकता है। किंतु ये भी परम स्नेही हो, अपने कुटुंब के हो, माता पिता भाई गुरु इत्यादि, उनको भी छोड़ो। कैसे, कोटि बैरी सम, संसार की शत्रुता शत्रुता नहीं है, जो लोग हमें विषयों में आबद्ध करके मोह बरसता हमको भगवत भजन से च्युति करा देते हैं, ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है। इसलिए कहते हैं सजिए कोटि बैरी सम यद्यप परम स्नेही, सजेव पिता प्रहलाद, अपने परम बंधु जिसने कि सारा जीवन उनका पालन पोषण किया, गर्भ में गर्भाधान किया, उसको पिताजी को प्रहलाद जी ने छोड़ दिया। हुआ क्या, परम मंगल हुआ, उनके पिताजी का तो उद्धार हुआ ही और इनका भी। सजेव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने, विभीषण को उसके भैया ने रावण ने लात मारी, इसलिए इसलिए तू राम की बात करता है, हमारा खाता है, जिस पत्ता में खाता है उसी में छेद करता है, तू हमारी सहायता नहीं करके कहता है जिस तुम सीताजी को लौटा दो, क्यों लौटाऊं, एक लात मार करके उससे फिर कभी मत आना। उन्होंने रामचंद्र जी की सुनी, हुआ क्या, उनके वजह से कुछ कुछ लंका बच गया और नहीं तो सारी लंका ही समाप्त हो जाती, और विभीषण को भगवान की भक्ति मिली, और सजेव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी मैया क्या कही, और उसको भरत जी ने बचाया। जीवन भर मां नहीं कहा, यदि कुछ कहा तो कहा महारानी क्या कही, महल में है, उनकी खाने पीने की सारी व्यवस्था कर दी, किंतु कोई भी पारमार्थिक संबंध नहीं। हुआ क्या, भरत जी जैसा भक्त भी दूसरा कोई नहीं है, और कौन, गोपियां, गोपियां अपने पतियों को छोड़ दी और कृष्ण के साथ में मिलने के लिए गई, और गुरु को कौन छोड़ा, बलि महाराज ने अपने गुरु को छोड़ दिया, उन्होंने कहा जी भगवान को मत दो, ये विष्णु है सब ले लेगा, कहते विष्णु का ही दिया हुआ, विष्णु का ही यदि हम दे देते हैं तो सब इसे बढ़ करके क्या होगा, हमको ऐसे गुरु से जरूरत नहीं है जो भगवान की सेवा के लिए मना करे। उनका भी परम कल्याण हुआ, बलि महाराज जी ने सर्वस्व भगवान को चढ़ सौंप। इसलिए ये सब लौकिक बातें हैं, इनको कहते हैं। इसलिए भगवान के लिए हम, भगवान ही हमारे पिता के पिता के पिता के पिता के पर पिता के पिता के भी पिता के मूल पिता हैं, भगवान ही हमारे पति के पति के पति के पति के समस्त विश्व ब्रह्मांड के पतियों के पति हैं, भूल से हम नहीं देख रहे हैं इसको। कृष्ण ही हमारे सर्वस्व हैं, इस चीज को नहीं देख रहे। ये तो एक जन्म के और वो लाखों जन्मों के हैं। बुद्धि को देने वाले कौन है? माता पिता दिया, माता पिता ने हवा दे दी जिसे एक मिनट हम बच नहीं सकते हैं बीच से। पानी भगवान ने बनाया ना माता पिता ने, तो माता पिता के प्रति जो ऋणी है तो भगवान के प्रति कितना ऋणी होना चाहिए, इस चीज को समझना। इसलिए भगवान की सेवा ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। वो बात सब गलत,
ये जो कहते हैं पांच ऋण जब तक आदमी नहीं उठा है,
लोट बात, भगवान का नाम लेते ही सब ऋण समाप्त हो गया, खत्म। उदाहरण देखिए, आपने उनसे 1,00,000 रुपया लिया, 1,00,000 रुपया के ऋण है तो चुकाने चाहिए। तो मैंने सिंघानिया जी को भक्ति दी जो रुपये से नहीं खरीद लिया, या समझ लिया कि हम 1,00,000,000 रुपया इनको दिया तो हमारे 1,00,000,000 रुपये के ऋण है, और भक्ति दिया तो भक्ति के ऋणी है ना। रुपये से आता ऋण चुक सकता है, भक्ति का ऋण नहीं चुकेगा। खरे रुपये में ही आइए, इनको 1,00,000,000 रुपया दिया और आपने उनसे 1,00,000 रुपया। मैंने इनसे कहा आप हमारे पास आए, महाराज जी आपके सामने आपके पास मैं रहना चाहता हूँ, किंतु उनका 1,00,000 रुपये का ऋण है, मैं कैसे आऊँ बिना चुकाए हुए। मैंने सिंघानिया जी को, सिंघानिया जी आपने 1,00,000 रुपया दिया था? हाँ दिया था। वो हम में से काट लेना, ठहर जाओ। सिंघानी हंसने लगे, अरे हाँ हमने छोड़ दिया भाई, अब नहीं जा, तुम महाराज जी की सेवा करो, अब हमको रुपये की जरूरत। उनका 1,00,000 रुपये में से 1,00,000 रुपये के क्या मूल्य रखता है, उन्होंने साथ ही साथ में कहा। ऐसी बात हुई हमारे यहाँ, परमात्मी महाराज नाम के एक थे, वो जब गृहस्थ थे तो हमारे सनातन सनातन हमारे नारायण प्रभु के पिताजी उनके यहाँ नौकरी करते थे, हाँ उनके कारखाने में, कपड़े के कारखाने में। तो गुरु जी गए तो गुरु जी की कथा सुन करके बड़े वो प्रभावित हुए थे प्रभुपाद जी के, नहीं मैं आपके पास में चलना चाहता तो चलो। मुनि महाराज जी का हमारे पास में 1,000 रुपया ऋण, 1,500 रुपया ऋण है, मैं बिना चुकाए से कैसे जाऊँ, मेरे को चुभती है। सनातन प्रभु वहीं पर थे, सनातन प्रभु को गुरु जी ने कहा जी आपका ऋणी है तो रुपया तो लिया था, किंतु आपके पास में जाएगा तो हम एक पैसा हमको नहीं चाहिए, अभी अभी चला जाए, बल्कि हम इसको और 500 रुपया और अधिक दे देते हैं, ये रुपये लेकर के जाए अपना चलाए और इनकी आप महाराज जी के साथ में रहिए। बस उसी समय में उन्होंने छोड़ दिया, बल्कि 500 रुपया और दे दिया। ऐसे है ये जो भगवान के ऋणी है उसके समान और किसी का है। इसलिए जगत का जो ऋण है भगवान की सेवा करने से वो सब अपने आप, किंतु सचमुच में होना चाहिए, झूठ नहीं, झूठा नहीं।
भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता,
यह झूठ बात। दो बात इसको समझो, राष्ट्रपति हमारे देश के सब प्रकार से ऊपर वाले हैं, शासन में यदि कुछ होगा वो यदि कह देंगे तो वो सब, या प्रधानमंत्री हैं। किंतु मैं आपको गाली देता हूं, चाहे प्रधानमंत्री हमारा सिर काट दें या वो, उस पर कोई अधिकार है उनका? सोचो, भगवान ने तुमको 100 स्वतंत्रता दी है, तुम को ये भी बतलाया जैसे ये अच्छा है ये काम बुरा है, तुम अपना काम ठीक से कर रही है, पुलिस या एसपी या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तुम्हारा कुछ करेगा? तुम अपना धर्म या अपना कर्तव्य पालन अच्छी तरह से कर रही है। पुलिस और ये सब चीजें कानून सब उनके लिए बनाया गया है जो इसका पालन नहीं करते, आज जब खुद ही पालन कर रहा है इनके लिए कोई जरूरत नहीं है, समझ रही ना? अच्छा, किंतु तुम अपने तुम या कोई दूसरे चलते हुए आ रहा है गिरोह को 10-20 को काट दिया, तुमको जेल में लेकर के छूट दिया, फिर 10 वर्ष के बाद में फिर छूट गया, फिर 10 आदमी को काटा, कानून से मान सकता है वो? अच्छा, तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि यह बात बुरी है, ये चीज अच्छी है। तो अच्छी मान करके जो करेगा उसके लिए कानून दंड नहीं है, उसकी जो लिए अवहेला करता है उसके लिए। उसी प्रकार से भगवान ने हमको दिया जन्म, हमारा स्वरूप बनाया, हम उनके ईश्वर के अंग। किंतु यदि हम भगवान की कही हुई बातों को नहीं मानते, हम भगवान का भजन नहीं करते, दूसरों को कष्ट देते हैं, मारते हैं, गंदे काम करते हैं, तो उसके लिए भगवान दंड देगा, इसके लिए भगवान दंड देगा। इसलिए जो हमने जो बुरा कर्म किया, भगवान पूर्ण रूप में समर्थ रहते हुए भी उस पर अंकुश नहीं जाते, तुम बुरा क्यों किया, तुम अच्छा क्यों, ये नहीं कहेंगे, ये तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा कल्याण हो। बस बस, जो हम बुरे भावना को हृदय में लाते हैं और जो हम अच्छे कर्म करते हैं, इसलिए भगवान कुछ नहीं करता। तुम जो बुरा करेगा उसका फल वो तुम्हारा नहीं चाहने से भी देंगे, तुम अच्छा करेगा उसका फल वो नहीं चाहने से भी वो देंगे। इसलिए फल भोगने में भगवान की पूर्ण स्वतंत्रता है, उसमें पत्ता भी नहीं हिल सकता है भगवान की इच्छा। किंतु स्वतंत्र रूप में जो तुम बुरा करने की इच्छा करता है, भगवान कुछ नहीं कहेंगे। पहले एक बार मन में ही हृदय में कहेंगे ये बुरा कर्म है मत करो, मना करेंगे, तभी कोई नहीं मानेगा, करो किंतु फल भोगना, पीस देंगे तुमको। दुर्योधन को भगवान समझाने नहीं गए, समझाने गए, बात माना, क्यों नहीं माना? वो चाहते तो उसको बदल नहीं सकते थे, बदलेंगे नहीं, इच्छा शक्ति रहने पर। उनकी हम लोगों के विषय में न्यूट्रल रहते हैं, हमारा कोई भी पक्षपात नहीं करते, किंतु यदि बुरा कर्म कर दोगे तो उसका फल तुमको एकदम पीस करके जरूर भोगना पड़ेगा। इसलिए हम अपने कर्म को ही ठीक से रखें, जिसको दंड देने की जरूरत है, नहीं तो फिर तुम बुरा करोगे, आप कहोगे जो भगवान ने किया, कोई डकैती कर रहा है, भगवान ने कहा जो डकैती करो। गीता में कितना उपदेश दिया है, अर्जुन को उपदेश दिया है, भागवत में उपदेश दिया, समझाया उसको कितना, माना नहीं, चाहते तो उसकी आत्मा को बदल देते, किंतु नहीं, अपना उनका कुछ रूल रेगुलेशन नहीं बदले।
तो महाराज ये ऐसा कभी कभी जो होता है कि मन में नहीं चाहते हुए भी ये काम हमको नहीं करना है, हमको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हम तो बहुत समझाते हैं अपने को भगवान को, फिर भी कभी कभी क्रोध आता है।
ये पूर्व जन्म का संस्कार है बेटी, पूर्व जन्म में तुमने कर्म किया, उसका फल भी होगा नहीं, इसलिए उस फल भोगाने के लिए ये ऐसी बात होती है। इसलिए पूर्व जन्म में हमने कुछ गड़बड़ किया था, उसके मतलब है ये तुम्हारा चित्त शांत नहीं है, मन समझाने पर भी नहीं समझता। वही पूर्व जन्म का संस्कार है। देखो एक कुत्ता है रास्ते चलता हुआ, उसको तुमने रोटी दी, दो तीन दिन देने के बाद में वो तुम्हारे घर आने लग गया। अब उस कुत्ते को एक आदमी ने एक पत्थर मारा, उसकी टांग टूट गई, तुमको क्रोध आएगा कि नहीं? क्यों? ये इसको कहते हैं संस्कार। ये संस्कार पूर्व जन्म में हमने लाखों लाखों जन्म में जो किया है उसका ये इसमें भरा पड़ा है, इसी को काटना है, धोना है। ये भजन से होगा, जितना ही भजन करेगी करते 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 ये सब चीजें निकल जाएगी, भूल जाएगा, और भगवान के प्रति जितना ही भक्ति होती जाएगी ये सब चीजें स्वाभाविक। और लाख चेष्टा करने में भी उस संस्कार को दूसरे कर्मों से नहीं जोड़ सकते, लाख कर्म वो तो भोगना पड़ेगा, और भगवान का भजन करने से वो भोगने की जरूरत ही नहीं। वो अपने आप, अजामिल ने लाख लोगों का वध किया, उसको भी फल नहीं मिला। वाल्मीकि ने लाखों करोड़ों आदमी, अर्जुन ने अपने धनुष बाण से, अब भीम ने लाखों लोगों को मारा, उसका फल उनको मिला है, भोगने के लिए है, क्यों? सब कुछ भगवान के लिए किया, उनमें कोई संस्कार नहीं थी।
इस प्रश्न का उत्तर का समय समालोचना हो रहा था इस फॉर्म में भक्त से सन्यासी से, मैंने कहा जैसे आपने कहा कि गलत है भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं सकता, बदमाश आदमी आगे कहते हैं कि मैंने थप्पड़ मारा या उसको एक मुक्का मारा या बैंक डकैती की, सब भगवान की इच्छा से हो रहा। मैंने सन्यासी से कहा कि ये गलत बात है, आई डोंट एग्री। तो वो प्रोटेस्ट करने लग गए, नहीं आप सोच सकते हैं ऐसा बिकॉज अपने इतनी योग्यता नहीं,
उनको न भजन है न साधन है न
गुरु,
बड़े उत्तम लोगों का संग है इसलिए उन चीजों को नहीं समझते, उसके शब्द के अर्थ को समझ सकते हैं किंतु शब्द में बहुत सी बातें हैं।
लेकिन राम बात को इतना महत्व नहीं दे रहे हो,
राम महत्व कैसे देंगे, उनको संग ही नहीं है, संस्कार ही नहीं है, तो वो क्या महत्व देंगे।
आज इसका उत्तर आपसे मिला है जो कि मिलता है हमारे विचारों से,
आपके विचार से मिले चाहे न मिले इसका कोई गुरुत्व नहीं है, गुरुत्व यह है कि शास्त्रों से मिलता है कि नहीं और बात शुद्ध है कि नहीं।
महाराज ये जो कहते हैं कि भगवान पथ पथ से
देखता है,
एक एक कदम से चलता है, वो सब देख रहा है, वो बात सही है,
ठीक है,
सही है।
वो हवा के माध्यम से देखते हैं, आकाश के माध्यम से देखते हैं, सूर्य के और चंद्र के माध्यम से देखते हैं, सब कुछ सब कुछ
लिखा जाता है,
सब
सब लिखता है, ये बात सही है,
सब सही है,
और लेखा जोखा जो होता है
सब ठीक है।
महाराज जी आप बताने जा रहे थे शब्द के टोन में उनका अर्थ छिपा हुआ है,
छोड़ दो पहले पहले इनको बोल देंगे। बोलिए
महाराज जी, अभी मुरारी बाबू का कुछ दिन पहले टीवी पे गोपी गीत बोलकर एक प्रोग्राम था, उन्होंने कहा श्रीमद भागवत चंद कृष्ण, यहाँ तक तो इस मत से हम लोग को लगता है ठीक है, उन्होंने कहा श्रोता और वक्ता दोनों गोपी है,
पाखंडी है, पाखंडी
गलत कहा ना, एकदम
गलत, एक तो माया बात सही है, गोप गोपी नहीं, वो कहेंगे जैसे ये जितने विश्व में प्राणी हैं ये सभी कोई कृष्ण नहीं है, उनकी बातें नहीं सुनना चाहिए, इसको आजकल वही सुन रहा है, इसे दिशा भ्रष्ट है। गीता भागवत जिसका अनुमोदन करते, गीता में लिखा गया है ये सब गोपी है,
कई करोड़ करोड़ जन्मों तपस्या करके गोपी बनी है,
नहीं करोड़ों भी तपस्या से नहीं होता, ये तपस्या ये आराधना और तपस्या में बहुत अंतर है, वो बल्कि भगवान की कृपा से होगा, आराधना से भी नहीं होगा, वो विशेष भगवान के भक्त जो है गोपियों की कृपा से, जोग माया की कृपा से होगा,
भगवान की इच्छा से होता,
भगवान की कृपा यदि हो, जोग माया की कृपा हो, या ऐसे उत्तम कोटि के जो भक्त हैं उनकी कृपा से, साधन से भी नहीं होगा। सुखदेव गोस्वामी ने कभी कहा जैसे मैं गोपी हूं और ये सब गोप्य हैं, कभी यही तो बात है।
आराधना और तपस्या में क्या अंतर है?
आराधना माने मैं अपनी चेष्टा से खाऊंगा नहीं, वैराग्य करूंगा, जैसे ध्रुव ने 6 महीने तक खाया नहीं, हवा भी बंद कर दिया, अंत में पानी भी बंद कर दिया और ध्यान भगवान में लगाया, इसको कहते हैं तपस्या। तप माने कष्ट, कष्ट हमने स्वीकार करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जैसे बेटा को आपने एक थप्पड़ मारा और बेटा खाना पीना छोड़ दिया ना, और चुपचाप बैठ गया, पढ़ना लिखना बंद कर दिया, खाना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया, बस चुपचाप बैठ गया, मैया क्या करेगी, 1 घंटा रहेगी, 2, अब इसके बाद में दिखा जी नहीं उठता है तो क्या करेगी, विचार करके उसको जैसे तैसे जो कुछ मांग रहा है उसको देगी, उसको मनाएगी, तो ऐसे ही हमारे कष्ट को दे करके भगवान कहेंगे भाई तू क्या चाहता है, क्योंकि हम उसके संतान हैं इसलिए कष्ट को दे करके क्या चाहता है, वो तो कहेगा जैसे हम वज्र जैसा शरीर चाहते हैं, विश्व ब्रह्मांड का वैभव चाहते हैं, अच्छे जाओ, इसको कहते हैं तपस्या। ध्रुव ने राज्य के लिए तपस्या की, और आराधना है भगवान का नाम कीर्तन श्रवण कीर्तन स्मरण करते 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 हा कृष्ण हा कृष्ण हा राधे हा गोपी हा गुरु वर्ग हमारे ऊपर में दया की, यह है आराधना। भाव से भगवान को भजन करते हैं, इसके लिए जो आराधना होती है ये आराधना श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन को आराधना, इन दोनों में अंतर। इसे भगवान मिलते हैं और उससे भगवान जो मांगते हैं चीज दे करके भगवान हट जाते हैं, ये अंतर। बोलिए आज अपना जो कुछ पूछना है पूछ।
गांधी और शिव जी के बारे में कहीं कहीं लिखा है भगवान की बुक्स में कि शुद्ध भक्त हैं, कहीं कहीं लिखा है कि वो दे आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, वो लोग शुद्ध भक्त नहीं है, कंफ्यूजन होता है इन लोगों के बारे में।
कहाँ ऐसा लिखा है?
भगवान के बुक्स में, भगवद गीता में या श्रीमद भागवत में बहुत जगह कंट्राडिक्टरी मिलता है तो कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए मैंने कहा सोचा कि आपसे पूछें कि बस क्या है।
ब्रह्मा और शंकर जी भक्त हैं, इसमें कोई बात नहीं है, कोई भी शंका की बात नहीं है, किंतु उनके भक्ति में तारतम्य है। ब्रह्मा जी की भक्ति से भी शंकर जी की भक्ति और ऊंची है,
वैष्णव गुरु
और हमारे संप्रदाय के आदि गुरु ब्रह्मा जी हैं, तो भक्त नहीं होंगे तो ऐसे ही ग्रहण कर लिया। नारद जी ने और व्यास जी ने, सुखदेव गोस्वामी जैसे लोग जिस परंपरा में आ रहे हैं तो नारद जी भक्ति नहीं आएंगे, ये तो साधारण सी बात है। तो जो ऐसा कहते हैं वो मूर्ख हैं, कुछ नहीं जानते। और भागवत में ही लिखा है वैष्णवानां यथा शंभु, जो गोपी बन करके गोपीश्वर बन करके वृंदावन में कृष्ण की सेवा करते हैं उनकी भक्ति में कोई संदेह हो सकता है? इसलिए इसमें शंका की बात नहीं, इसलिए ये लोग जो कह रहे हैं
दोनों भक्त
वो कहीं भी कोई हो, कोई भी कह रहा हो, चाहे इसकोन हो इसकोन की बात है, सब एक बात है। वो जगत का पालन पोषण करते हैं, ध्वंस करते हैं, भगवान की इच्छा से जगत का ये सृजन करते हैं। कैसे सृजन करते हैं? जीव को नहीं, जीव के बारी शरीर को। और शंकर जी जैसे खेत होता है, खेत देखा है ना, कोई चीज लगाते हैं उसकी रक्षा करते हैं, वो बड़ा हो जाता है, गेहूं जैसे है, बड़ा हो गया, उसकी अन्न उसमें लग गए, दिन रात उसकी चौकसी देता है, और जब खेत पक जाता है तो उसको क्या करता है, हसिये से काट लेता है, काट करके उसमें से अन्न को झाड़ लेता है और पुआल को जला देता है या किसी दूसरे काम में दे देता है, और उसमें भी धान गेहूं को अच्छी तरह से रख करके उसको पीस करके खाता है, पुआल तो खाता नहीं। तो शंकर जी इस जगत में जिनके ये सब शरीर हैं जो कर्मों से मिला है, अंत में इसको हटा करके उसकी आत्मा को रख लेते हैं और वो आत्माएं भगवान नारायण में जो गर्भोदशाई है उनके शरीर में उस बीज को रख देते हैं, और फिर जब दूसरी सृष्टि आएगी तो फिर। इसलिए शिव जी भी ध्वंस नहीं करते, वो पुआल घाट को जला रहे हैं, ये भी उनकी कृपा है, नहीं तो गेहूं उसी में रह करके सड़ जाएगा यदि बीज से अलग नहीं किया जाए वो से पुआल से, ये भी कृपा है। और ब्रह्मा जी जैसे मोटर है, अमेरिका से इंग्लैंड से यहाँ से पुर्जे बन करके आए, हिंद मोटर में उसको जोड़ करके एक मोटर बना दिया, ठीक वैसे ही ये शरीर के प्रपंच के जितने शरीर हैं ये ब्रह्मा जी का कार्य है, आत्मा को नहीं। आत्मा उसमें जाने से ये समझती है कि मैं ही ये शरीर हूँ, ये ब्रह्मा का, किंतु दोनों परम भगवत हैं, किंतु इनका कार्य कुछ निमित्त के लिए है बस, त्रिगुण के अंतर्गत है। ब्रह्मा जी का कार्य है रज और शंकर का कार्य है तम, किंतु इनसे अतीत है, अतीत होकर के भी उनके गुणों का काम कुछ करते हैं, इसलिए लोग समझ नहीं पाते। जैसे सब जेल में सभी कैदी होते हैं है ना, किंतु जेलर यदि जेल को देखने के लिए जाता है तो वो कैदी है कि नहीं, कैदी है। अच्छा, उसका जो पुलिस जो रहता है सिपाही जो गार्ड देता है वो जेल के अंदर में गया तो उसी कैदी है
नहीं।
उसी तरह से ब्रह्मा जी शंकर जी जेल में ये संसार रूपी जेल है दुर्ग है उसका सुपरविजन करते हैं देखते हैं सुनते हैं किंतु जेल में नहीं है माया में नहीं है। इस तरह से कभी कभी विष्णु स्वयं ब्रह्मा और शंकर बनकर के जगत का पालन और ध्वंस करते हैं और कभी कभी जब ऐसा योग्य जीव मिलता है तो उसमें कुछ शक्ति संचार करा करके सब ब्रह्मा का काम कराते हैं और शंकर तो जिस समय में विष्णु वो काम करते हैं स्वयं ब्रह्मा बनकर के उस समय में वो विष्णु ही है भगवान।
महाराज कर्म के हिसाब से ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र माने जाते हैं मगर एक जगह लिखा है कि जब भगवान कृष्ण यहाँ आए उस समय कुछ लोग उनके अगेंस्ट में जो थे उस समय भी वो लोग ब्राह्मण वंश में उनका जन्म होता है इस समय सभी कहाँ तक ये सच है ये कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है
अभी ठीक से पूछिए साफ करके
जो ब्राह्मण थे
मैं इनको बोलने दे आप अपना वक्तव्य स्पष्ट कीजिए।
भगवान के समय में कुछ लोग जो भगवान से विमुख थे वो लोग इस कलयुग में ब्राह्मण वंश में उनका जन्म होता है तो इधर में ब्राह्मण वंश में जन्म होता है दूसरे से लोग है कि कर्म के हिसाब से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो ये दो
तो ब्राह्मण के कृष्ण के समय जो विमुख थे वो कैसे कर्म करते होंगे
अगेंस्ट वाले तो
तो इसलिए विमुख होकर ब्राह्मण होकर के मैं बहुत ऊंचे कुल में हूँ और मांस खाते हैं अंडा खाते हैं गोश्त खाते हैं मुखर्जी सू एंड कंपनी बनाते हैं हमारे यहाँ ब्राह्मणों में बहुत से लोग ऐसे करते हैं मांस मछली खाते हैं तो ये ब्राह्मण में आकर के ये ब्राह्मण का कार्य थोड़े कर रहे हैं इसलिए पहले अशुभ थे उसी
का मतलब है कि एक तरफ से बोलते हैं कि जन्म के जो है कर्म के हिसाब से होता है ब्राह्मण
कर्मचारी तो हुआ
वो बोलते हैं कि ब्राह्मण
कलयुग में होगा कलयुग में सबसे भ्रष्ट ब्राह्मण होगा इसलिए और इसलिए भी नहीं असल में हुआ जो बौद्ध धर्म को जो मानता है वो सब निशाचर है इसलिए आजकल कलयुग में सब लोग अधिकांश लोग अब धीरे 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 बौद्ध होते जा रहे हैं या जैन होते जा रहे हैं एक साथ में 40,000 लोग हिंदुओं से मुसलमान ये थे चमार मोची इत्यादि ये हमारी उन्नति होगी हमको नौकरी मिलेगी और इसलिए बौद्ध बन गए तो धर्म के लिए तो बौद्ध नहीं हुए कुछ सांसारिक सुविधा के कोई लोग क्रिश्चियन हो गए किस लिए हुए अपने कर्म से संस्कार से अपनी सुविधा के लिए हुई जागृति इसलिए इसे कर्म का और उसका कोई भी संबंध नहीं है इसलिए कलयुग में सभी एक तरह से शुद्ध ही हैं जन्म से ही
जन्म तो दे दिया ब्राह्मण
अरे भाई ब्राह्मण नहीं है आजकल का ब्राह्मण भी वही समझो बल्कि उस बनिए और दूसरों से भी गए बीते हैं इसलिए कलयुग में ये ब्राह्मण हुए
फिर मेरा कहने मतलब एक तरफ तो आप बोलते हैं हम लोग बोलते हैं कि कर्म के हिसाब से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं
हुआ तो
हाँ
किंतु कलयुग में ब्राह्मण जो जाति है ये भी शूद्र के समान हो गई है इसलिए उसे शूद्र में भी वो ब्राह्मण में ही आ रहे हैं उनको कुछ सुविधाएं मिलनी है जो निशाचरी का काम किया है भगवत विमुख का काम किया है इसलिए वो ब्राह्मण यथार्थ में दो चीज है वर्णाश्रम धर्म एक दैव वर्णाश्रम और एक आश्रित वर्णाश्रम जो दैव वर्णाश्रम है वो उसमें साधु भाव रहेगा भगवान का कुछ भजन रहेगा वो ब्राह्मण होते हुए भी भगवान का भजन करेगा ये तो दैव वर्णाश्रम जिस कुल में भी जन्म हो किंतु भगवान का भजन करने वाले जिसमें शांत दांत सहिष्णुता विद्या इत्यादि है वो लोग ब्राह्मण इसलिए जो जिसमें नहीं है वो सभी शूद्र के समान है तो कलयुग में इसके ठीक ही विपरीत हो रहा है कर्म से उनको आना चाहिए शूद्र में तो चूंकि ब्राह्मण भी आजकल शूद्र है इसलिए उसमें शूद्र में आ रहे हैं यह है अदैव वर्णाश्रम अदैव वर्णाश्रम है भगवान का भजन करते हैं हरिनाम करते हैं सबके प्रति दया भाव है सहिष्णुता गुण है और सब चीज किसी भी कुल में हो कि तो ब्राह्मण स्वभाव का है प्रभुपाद जी ने हमारे शास्त्रों में भी भागवत में भी इसी प्रकार से कहा। एक ऋषभ देव थे, उनके 100 लड़के थे। 100 लड़कों में से एक हुआ क्षत्रिय राजा, उसका नाम हुआ भरत, और 9 हुए 9 जोगेंद्र, जाति पाति से ऊपर परमहंस, सब समय भगवत चिंता करने वाले। 81 कर्मकांडी ब्राह्मण हुए, कर्मकांडी ब्राह्मण। तो एक ही पिता के ये कैसे संतान विभिन्न हो गए, क्यों हुए? कोई ब्राह्मण चाहते एक पिता का तो एक ही होना चाहिए ना, यदि जाति से होता है। इसलिए पहले ऐसा नहीं था, ये कलयुग में कुछ विपरीत भाव होकर के ऐसा हो रहा। आजकल संस्कार है ऐसा जो चारों वर्ण में कहीं भी जन्म लो वो शुद्ध ही है। यदि भगवत भजन करते हैं जहां भी हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, वो ब्रह्म ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण,
ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण।
इसलिए इसके चक्कर में अधिक समय नष्ट करने की जरूरत नहीं, बस भगवान का स्मरण करें, चिंतन कर, उसको कोई डाउट नहीं रह जाएगा किसी भी विषय। कोई भी डाउट नहीं रहेगा।
महाराज जी, तन मन आत्मा,
तन मन वचन और आत्मा,
इसके विषय में थोड़ा मेरे को जानना है कि तन क्या है, मन क्या है, आत्मा क्या है।
अच्छा,
ये भजन कर रहा है कौन कर रहा है, मन कर रहा है,
भजन ही है, आत्मा करा रही है,
आत्मा करा रही है, कर कौन रहा है?
ये अभी मन कर रहा है, अभी मन कर रहा है, किंतु आत्मा के द्वारा हो रहा है। चोरी जो हो रही है ये संपूर्ण रूप से मन की है, पूर्व जन्म का संस्कार से ये कर रहा है, इसमें भगवान की कोई प्रेरणा नहीं है, आत्मा की कोई भी प्रेरणा नहीं है। चोरी चमारी झूठ बोलना, बेईमानी करना, दूसरों को काटना मारना डालना, ये मन का ऐसा स्वभाव है, जैसा मन का संस्कार किया था वैसा। अभी जो हम कहेंगे तुम हरिनाम करो, आप कहेंगे जैसे इसमें अभी मन नहीं लगता है, पहले हम कहें नहीं मन लगता है तो भी करो, आपका मन नहीं कर रहा है तो अभी जोर से आप कर रहे हैं, ये कौन कराया? साधु जी ने कहा, गुरु ने कहा, आप कर रहे हैं, अपने मन से तो नहीं कर रहे। वो कहा जैसे देखो तुम जितना संसार में काम कर रहे हो, एक नाम थोड़ा सा भी कर देगे तो उससे लाखों तुमको लाभ मिलेगा, इसलिए श्रद्धा हुई आप नाम करने में। इसलिए नाम को कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, कौन? एक महापुरुष, वो कौन है? कृष्ण का भक्त है। और ये कौन कर रहा है, ये कौन सुना? ये आत्मा, आत्मा मन नहीं करा रहा, मन तो फजूल का काम कराएगा, उसका संस्कार ही वैसा कर रहा है।
तो क्या एक वजूद में दो चीज होती
है? इसमें चार पांच चीजें हैं। ये शरीर है ना, ये है कपड़ा, ये कपड़ा कैसे उठ रहा है बैठ रहा है, कौन करा रहा है? अपने आप कर रहा है ना, ये कपड़ा उठ रहा है बैठ रहा
है,
हाथ करा रहा है। अच्छा, आदमी जब मर जाता है तो उसका हाथ कैसे ऐसा क्यों नहीं करता? क्यों
बोलते हैं वो आत्मा नहीं
है? आत्मा नहीं है इसलिए नहीं कहा, इसलिए वो आत्मा करती है ना, इसलिए मन नहीं, वो शरीर नहीं करता, ये पहली बात तो ये समझो। अच्छा, अब रहा मन, मरने के बाद में मन रहता है कि नहीं? इसलिए ये शरीर का काम जो था अब वो बंद हो गया, इसमें मन भी नहीं है आत्मा जी। अच्छा, एक आदमी सो रहा है, सो रहा है, वो स्वप्न भी नहीं देख रहा, एकदम सो रहा है, उस समय में मन की कोई क्रिया है कि नहीं? शरीर तो है ना, शरीर कभी इधर से उधर ऐसा भी करता है किंतु सो रहा है। अच्छा, उस समय में मन की भी क्रिया कोई नहीं है किंतु मरा हुआ भी नहीं, इसलिए मन से यह शरीर अलग है।
मन की क्रिया तो है उस समय, है?
मन की क्रिया नहीं है उसमें, मन से वो अलग चीज है। मन, हाँ वही, अब समझो इसको, समझा रहे हैं। शरीर और मन में तो ये फर्क हुआ, शरीर हम नहीं है, मरने के बाद में ये काम नहीं कर। अब मन में और आत्मा में समझो उसमें क्या अंतर है। मन में आत्मा में ये अंतर है कि जब आदमी मरता है तो जोंक की तरफ में मरता है। जोंक जोंक जानती है पानी में जो चलने वाला एक छोटा सा कीड़ा होता है जो चिपक जाता है खून चूसता है तो वो चलता है तो ऐसे चलता है ऐसे रख फिर पैर उठा करके फिर ऐसे
तो एक पांव जब तक दूसरा नहीं रखा जाएगा दूसरा पांव
नहीं उठाता। वैसे ही आत्मा जो है अभी मन के द्वारा कवर्ड है।
अच्छा।
जैसे शरीर मन अभी कवर्ड है शरीर के द्वारा
मन कवर्ड है शरीर के द्वारा।
हाँ ये तो समझ में आ रहा है ना।
हाँ, हाँ।
इसके अंदर में मन है।
अच्छा।
और मन दिखाई नहीं पड़ता।
अच्छा।